लेक्चर नंबर 3। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वर्षायाणम्, नमो लोए सौवसाहूणम्। सिद्धमणन्तमणिन्द्रिय मणुवमत्थसोकमणवच्चम् केवलपहोहणिज्य दुन्नयतिमिरञ्जिनम् नमः। आचार्य श्री वीर स्वामी रचित, वीर सेन स्वामी रचित यह षटखंडाग्रम ग्रंथ की धवला नामक टीका है और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 18 पर। हाँ, आपकी क्या शंका है? चौदह नंबर का पृष्ठ है, विशेषार्थ की तीसरी लाइन
जो षडगुणी है।
हाँ, नहीं, ये षडगुणी हानि वृद्धि वाला अगुरु लघु गुण अलग, विच्छेद सामान्य गुण में जो कहते वो अलग। देखो, गुणों में तो अविभाग प्रतिच्छेद होते ही है, अनंत होते हैं, उससे जो पर्याय में प्रकट होते हैं उसमें हीनाधिकता होती रहती है, उसको षट्स्थान पतित हानि वृद्धि कहते हैं। ये तो
माइक तो पाठ में गया,
हाँ अभी हम चालू करते हैं, एक मिनट। हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर चल रहा है यहाँ पर।
काढ़ूं तक ना,
तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो अगुरु लघु नाम का गुण है और उसके कारण द्रव्य में अनादि से ही प्रत्येक पर्याय में षट्स्थान रूप से वृद्धि हानि होती रहती है, ये उसका स्वभाव परिणमन है, अनादि से ये स्वभाव परिणमन। तो कहते कि निरंतर प्रवर्तमान रहते हैं षडगुण हानि और षडगुण वृद्धि रूप से, निरंतर प्रवर्तमान रहते हैं। कौन? अविभाग प्रतिच्छेद। गुण में तो वो शक्ति सामर्थ्य सदैव है और पर्याय में उसके हीनाधिकता जो प्रकट होती है अंशों की, उसको यहाँ षडगुणी वृद्धि षडगुणी हानि कही है। तो उस अपेक्षा से अगर कहेंगे तो वो द्रव्य का उत्पाद मानेंगे हम, वो एक बात। प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय में नहीं, वो तो अलग अलग होगी ना, कभी वृद्धि कभी हानि। आपके कुछ अलग कहना है? हाँ, प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय, परंतु जैसे हम कहेंगे ना, जो द्रव्य तो गुण है और उसका रूप सभी में है, तो हर गुण अपना अपना परिणमन निरंतर करता है। ऐसे ये अगुरु नाम गुरु लघु नाम का गुण है और उसके अविभाग प्रतिच्छेद है और वो भी इनादिक होते रहते हैं, तो अन्य सभी गुणों में भी ऐसा ही होता रहता है, यानी ज्ञान के भी अविभाग प्रतिच्छेद हर समय इनादिक होते रहते हैं।
ये
वो अलग,
ये भी तो सामान्य गुण
है, ये भी सामान्य गुण है, क्योंकि हर द्रव्य में अपना अपना परिणमन चलता है और उसमें वो षट्स्थान प्रतिस्थान वृद्धि भी होती रहेगी। ऐसे एक ही नाम के कितने ही गुण होंगे, क्यों? अनंत गुण है तो वचन तो लिमिटेड है, संख्यात हो गए, और गुणों तो अनंत है तो उसके भाव अलग अलग हो सकते हैं।
अभी 15 पृष्ठ पर,
हाँ अभी दूसरा जो,
हाँ जया बेन का प्रश्न है,
हाँ
तो सेकंड लाइन 15 पृष्ठ,
पृष्ठ नंबर 15,
सेकंड लाइन में, इन नयों के विषयभूत तद्भव सामान्य और सादृश्य सामान्य सभी निक्षेप संभव है।
हाँ, तो इसका तद्भव सामान्य क्या है और सादृश्य सामान्य क्या है, ये प्रश्न है। अभी उसका उत्तर आज आने वाला है।
अच्छा, लेकिन
अभी वो आएगी बात। हाँ, 18 पेज पर ये बात चालू हो जाती है।
अच्छा,
देखो अभी तक हमने क्या क्या बातें देखी थी। ये जो मंगल होता है, यानी पहले हमने मंगलाचरण देखा था। मंगलाचरण रूप जो सूत्र है वो नमोकार मंत्र है। तो वहाँ ये बात बताई थी कि 6 अधिकारों का व्याख्यान करने के बाद ग्रंथ की शुरुआत होती है। वो 6 अधिकार कौन से है? मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और उसका कर्ता। तो उसकी बात उन्होंने आगे बढ़ाई है। तो जो हर एक जो मंगल आदि जो 6 बातें बताई ना, उन सभी पर 6-6 द्वारा उसका निरूपण होता है। मंगल का निरूपण भी 6 अलग अलग बातों के द्वारा होगा। तो क्या क्या है वो बातें? धातु, यानी उसको कौन सी क्रियापद से वो शब्द बना, फिर निक्षेप, नय, एकार्थ, निरुक्ति और अनुयोग। ये 10 नंबर के पेज पर हुआ, 10 नंबर का पेज। यानी पहले हमने मंगल आदि 6 बातें देखी, वो प्रत्येक पर ये 6-6 बातें घटित करना है। यानी कौन से धातु से हुआ वगैरह, वो क्यों करना, उसकी बात अपनी हुई थी। पहले उसका धातु कौन सा है, फिर उसमें निक्षेप कौन कौन से होते हैं, तो हमने 6 निक्षेपों से इसमें कौन से लगेंगे वो बातें देखी थी। फिर उसके नए द्रव्यार्थिक, नए पर्यायार्थिक, नए आदि जो है, तो ये निक्षेपों के अनुसार उसमें कौन से नए लगते हैं उसकी भी चर्चा यहाँ हुई थी। और उसमें ये बातें बताई थी कि एक द्रव्यार्थिक नय होता है, एक पर्यायार्थिक नय होता है। द्रव्यार्थिक नय को भी 2 पद्धति से, एक संग्रह नय को विषय बनाने वाला वो द्रव्यार्थिक नय जिसको शुद्ध कहेंगे, और पर्यायार्थी यानी व्यवहार नय को विषय बनाने वाला। अभी यहाँ द्रव्यों में भेद बताए, पर द्रव्य के भेद नहीं किए, इसलिए उसको हम आगे वाले रुजु सूत्र नय यानी पर्याय वाले भेदों में नहीं लेंगे। ये पूरे द्रव्य को ही, अखंड द्रव्य को ही विषय बनाता है, परंतु उसमें जीव, पुद्गल वगैरह भेद होते हैं। तो ये बात हमने उसमें देखी थी। उसके बाद ये जो नए हैं अलग अलग, उनके यहाँ नाम बताए थे। संग्रह व्यवहार की बात है, वो द्रव्यार्थिक नए है। रुजु सूत्र है, वर्तमान पर्याय को विषय बनाता है। और रुजु सूत्र नए का कथन करने वाले जो शब्द है, उनमें और अधिक अधिक सूक्ष्मता की अपेक्षा से शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय बनते हैं, उसकी भी हमने चर्चा देखी। फिर उस संबंधी कुछ जो हमने वहां पर चर्चा उसको की थी। अब यहाँ कहते कौन से निक्षेपों में कौन से नय लगते हैं, या कौन से नयों में कौन से निक्षेप लगते हैं। नयगम, संग्रह और व्यवहार में सभी निक्षेप लगते, 6 निक्षेप लगते। ये ख्याल में आई बात? ये पेज नंबर 15 पर है, देखना जरा आप। कि 7 नयों में से यहाँ बात चल रही है। पहली लाइन है, नयगम, संग्रह और व्यवहार 3 नयों में नाम, स्थापना वगैरह सभी 6 निक्षेप लगेंगे। अब उसके बाद हाँ, आगे की पेज पर आ जाना। सोलह पेज पर लास्ट पैराग्राफ, रुजु सूत्र नय में स्थापना निक्षेप को छोड़कर शेष सभी निक्षेप बनते हैं।
5।
अब 17 नंबर पर, वो तीसरा चौथा पैराग्राफ है छोटा, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत नय में भी नाम और भाव ये 2 निक्षेप होते हैं, अन्य कोई निक्षेप नहीं होते। यानी कौन कौन से नयों में कौन कौन से निक्षेप लगते उसकी यहाँ चर्चा हुई। वहाँ ये बात पूछी गई थी कि नय का निरूपण किस लिए किया गया है, उसकी आवश्यकता क्या है। तो यहाँ बताया था कि प्रमाण, नय और निक्षेप के द्वारा पदार्थों का निर्णय करना चाहिए। उसमें बताया था ये प्रमाण, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण होते हैं, नैगम आदि नय है और नामादि निक्षेप है। तो पदार्थों का अच्छी तरह से समीक्षण, परीक्षा करना योग्य है, ये बात वहां बताई थी। अब 18 पेज पर हम आए हैं। प्रमाण किसको कहना, तो सम्यक ज्ञानम प्रमाण, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और नामादि द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को निक्षेप कहते हैं। ये वस्तु में नाम हमने रखा उसका कोई पहचानने के लिए, बुलाने के लिए, एक वस्तु में अन्य वस्तु की कल्पना की, स्थापना की, उसको स्थापना निक्षेप कहें। उसकी बात अभी आने वाली है डिटेल में, ये सभी की चर्चा डिटेल में होने वाली है। यानी और ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं, और कहते हैं कि इन तीनों से यानी युक्ति से, बहुत बार शास्त्र में आता है युक्ति से जानो, युक्ति से जानो, इन्हें प्रमाण से जानो, नए से जानो, निक्षेप से जानो। तो यहाँ हम ये 11 नंबर की गाथा का जो अर्थ है पेज नंबर 18 पर, उसको फिर पढ़ते हैं।
विद्वान लोग
सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। नामादिक के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को न्यास या निक्षेप कहते हैं, उसी को न्यास कहेंगे, निक्षेप को ही न्यास कहते हैं। नामादि के ने नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, हर एक के आगे निक्षेप निक्षेप लगा लो। और ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते, यानी कौन से एंगल से हम द्रव्य को देख रहे हैं। इस प्रकार युक्ति से, अर्थात ये युक्ति क्या है वो बता रहे हैं, प्रमाण, नए और निक्षेप के द्वारा पदार्थ का ग्रहण अथवा निर्णय करना चाहिए। कुनकुंदाचार्य ने भी बताया था युक्ति के अवलंबन से, यानी आगम का अवलंबन लेना है, परंपरा आचार्यों का उपदेश है, और युक्ति से ने हम स्वयं उसको पदार्थों को, किसी विषय को प्रमाण नए निक्षेप से जानेंगे, तो हमने उसका अधिगम किया, जान लिया, उसके उपाय हमने चतुरार सूत्र में भी देखे थे। अतएव नए का निरूपण करना आवश्यक है। ये क्यों करना, ये बात पूछी गई थी। अब यहाँ जो आपका प्रश्न है ना, ये तद्भव सामान्य, सादृश्य सामान्य वगैरह, उसकी चर्चा अब आने वाली है। देखो अब आगे नामादि निक्षेपों का कथन करते हैं। पहले निक्षेप बताना चाहिए, नए बताना चाहिए, वो बातें बताई थी उन्होंने। यानी उसमें बताया कि धातु देखा हमने, निक्षेप की बात चल रही थी, तो कौन से नए में कौन से निक्षेप लगते वो चर्चा आ गई। अभी निक्षेप की चर्चा पूरी नहीं हुई, तो ये 6 प्रकार के जो निक्षेप है उसकी चर्चा यहाँ करेंगे। देखो पढ़ते हैं अब आगे नामादि निक्षेपों का कथन करते हैं। उनमें से अन्य निमित्तों की अपेक्षा रहित किसी की नहीं, पहले नयों का विषय शुरू हुआ था, मंगल शब्द पर धातु लगाया, निक्षेप बताना चाहते थे, 6 निक्षेप कौन से वो बताए थे, और फिर कहते कि कौन से नयों में कौन से निक्षेप लगते उसकी चर्चा हुई। नयगम संग्रह और व्यवहार में 6 निक्षेप लगते हैं, ऋजु सूत्र में स्थापना के बिना बाकी सब लगते हैं, शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत में नाम और भाव निक्षेप लगते हैं। ये बात हमने देखी। अब ये निक्षेप का यहाँ प्रकरण समाप्त नहीं हुआ। ये जो 6 प्रकार के जो निक्षेप है उसका स्वरूप क्या है उसकी बात यहाँ बताएंगे। तो पहले नाम मंगल किसको कहें, क्योंकि हमारा विषय है मंगल, मंगल पर हम निक्षेप लगाएंगे तो 6 होते हैं, नाम मंगल, स्थापना मंगल वगैरह वगैरह। तो नाम मंगल किसको कहना, तो हम किसी व्यक्ति का या किसी चीज का कोई भी नाम रख सकते हैं,
मंगल,
हम मंगल नाम रखेंगे ना। अपने बच्चे का कोई सर्वज्ञ भी नाम रखता है, कोई वितराग रखता है, वो वितराग ही थोड़े ही है, यानी उसमें वो लक्षण नहीं है, फिर भी हम उसका वो नाम रख सकते हैं। वो मराठी में कहावत है, नाव सोनू भाई, हाथी कतलाता वाला, हाँ, यानी वो इतनी गरीब है फिर भी उसका नाम सोनू भाई हो सकता है, लक्ष्मी भाई हो सकता है ना, यानी उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसमें वो गुण या उसमें वो संयोग हो वहां पर। ऐसे रूपाली नाम होता है, रूपाली का अर्थ होता है गोरी, तो हम उसका नाम भी रख सकते हैं, वो भले वो सावली भी हो, ख्याल में आती है बात। यानी ये नाम रखने के लिए वो विशेषता उसमें होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नाम मंगल रखते, जैसे हमने बच्ची का हमारा नाम मंगल रख दिया, तो वो मंगल थोड़ी होने वाली है, ख्याल में है ना बात। ये कहना चाहते अन्य निमित्तों की अपेक्षा से रहित किसी की मंगल ऐसी संज्ञा करने को नाम मंगल कहते हैं। अब ये अन्य निमित्त की अपेक्षा रही थे, निमित्त की अपेक्षा से भी कोई नाम रख सकते हैं? तो कहते हाँ। तो ये कौन से निमित्तों की अपेक्षा हम नाम रख सकते हैं? तो ये चार प्रकार के, यानी जिनके आधार से हम नाम रख सकते हैं, ऐसे निमित्त चार प्रकार के होते हैं। एक है जाति, दूसरा है द्रव्य, तीसरा है गुण और चौथी क्रिया। यानी जाति की अपेक्षा हम नाम रख सकते हैं, द्रव्य की अपेक्षा, उसके गुण की अपेक्षा, क्रिया की अपेक्षा। अभी उसका ही यहाँ वर्णन चलेगा। उन चार निमित्तों में से तद्भव सामान्य को, ये तद्भव सामान्य को कहना है, और सादृश्य लक्षण, सादृश्य सामान्य, यानी तद्भव और सादृश्य लक्षण वाले सामान्य को जाति कहते हैं। यानी दो प्रकार के सामान्य, तद्भव सामान्य और सादृश्य सामान्य, इसको क्या कहा? जाति। देखो क्या कहते हैं, ये तद्भव सामान्य को ही, यानी एक ही भव में वो मनुष्यपना जो कायम है वो तद्भव सामान्य है, और तिर्यक सामान्य ने अनेक जीवों में जो समानता हो ये सारे वो सादृश्य सामान्य, समानता, सादृश्य ने समानता। देखो इसको और आगे विशेषार्थ में भी समझा रहे हैं। देखो विशेषार्थ इसका पढ़ते हैं 19 पेज पर। किसी एक द्रव्य की त्रिकाल गोचर अनेक पर्यायों में रहने वाले अन्वय को तद्भव सामान्य या ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। यानी वही का वही जीव है, ये ऊर्ध्वता सामान्य हुआ। या मनुष्य में लगाना है तो वही मनुष्य बाल था, वो युवा हुआ, वो वृद्ध हुआ। जैसे मनुष्य की बालक युवा वृद्ध अवस्था में मनुष्यत्व सामान्य का अन्वय पाया जाता है, अन्वय का अर्थ होता है कंटिन्यूटी, वही का वही है। तथा एक ही समय में नाना व्यक्तिगत सदृश परिणाम को सादृश्य सामान्य या तिर्यक सामान्य कहते हैं। जैसे अनेक मनुष्य है वो भिन्न भिन्न है, सब में मनुष्यपना यह सामान्य है, उसको सादृश्य सामान्य कहेंगे। एक ही मनुष्य में लंबे काल तक उसका मनुष्यपना बना रहता है तो उसको कहेंगे तद्भव सामान्य, और सादृश्य सामान्य में हाँ सब में वो सदृशता है अनेक अलग अलग जीवों में। फिर इसको पढ़ते देखो, तद्भव सामान्य कोई ऊर्ध्वता सामान्य का, जैसे मनुष्य की बालक युवा वृद्धावस्था में मनुष्यत्व सामान्य का अन्वय पाया जाता है। तथा एक ही समय में नाना व्यक्तिगत यानी अलग अलग व्यक्तियों में सदृश परिणाम है, वो सादृश्य सामान्य है या तिर्यक सामान्य है। जैसे हम कहते हैं ना, ये तो जाति अपेक्षा छह द्रव्य है, यानी उसमें वो तो फिर उसकी जाति अलग अलग उसमें करेंगे हम, या एकेंद्रीय जाति है ऐसा कहेंगे। एकेंद्रीय जाति ने अनेक जीवों में वो एकेंद्रीयपना सदृशता है, उसका सादृश्य सामान्य कहें। जैसे रंग आकार आदि से भिन्न भिन्न प्रकार की गायों में गोत्व सामान्य का अन्वय पाया जाता है, यानी गायपना समान है, भले वो सफेद कलर की हो, काली हो, कुछ भी हो, तो सभी गाय है। तो ये हुआ जाति की अपेक्षा नाम रखना, ये नाम की बात है। यानी हम जीव को मनुष्य कहते हैं वो जाति अपेक्षा का, वो एक ही मनुष्य छोटेपन से वृद्ध तक है तो कहते वो तद्भव सामान्य हो, यानी वो जाति कैसी है वो तद्भव सामान्य हो, या अनेक मनुष्य है तो उसका नाम मनुष्य हम रखते हैं, वो जाति अपेक्षा रखते हैं। ये हुआ, ये छह द्रव्य की जाति, उनके छह अलग अलग नाम रखते, वो एक ही जाति के अनेक भी हो सकते हैं या एक भी हो सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे, हम एक को भी जीव द्रव्य कहेंगे, अनेक भी जीव द्रव्य, ये जाति अपेक्षा नाम रख सकते हैं। ये हो गया निमित्त की अपेक्षा नाम रखना, ये हो गया नाम निक्षेप में। नाम निक्षेप का अर्थ क्या लिया था? निमित्त के बिना हम कोई भी नाम रख सकते हैं, तो क्या निमित्त से भी कोई नाम रख सकते, तो उसकी चर्चा चल रही है।
जाति,
हाँ, जाति अपेक्षा हम नाम रख सकते हैं, ये होगी बात। हम लौकिक में भी देखते हैं ना, ये ब्राह्मण जाति का है, जैन का है, ये कुल की अपेक्षा ऐसे, वो तो जाति भेद हुए उसके। अब दूसरा है द्रव्य। द्रव्य के दो भेद हैं, संयोग द्रव्य और समवाय द्रव्य। उनमें अलग अलग सत्ता रखने वाले द्रव्यों के मेल से जो पैदा हो उसे संयोग द्रव्य कहते हैं, और जो द्रव्य द्रव्य में समवेत हो अर्थात कथनचित तादात में रखता हो उसे समवाय द्रव्य कहते हैं। देखो नीचे उसके समवाय द्रव्य निमित्तक नाम बताए आगे, आगे के पैराग्राफ में इसको और क्लियर करेंगे। द्रव्य के कौन से भेद देखे, संयोग द्रव्य और समवाय द्रव्य, यानी इसके अपेक्षा हम नाम रख सकते हैं। ये हुआ निमित्तों की अपेक्षा से नाम रखते हैं ना, उसमें ये द्रव्य की अपेक्षा नाम रख सकते हैं। अब पर्याय आदि की अपेक्षा परस्पर विरुद्ध हो अथवा विरुद्ध हो उसे गुण कहते हैं। यानी गुण निमित्तक नाम हम उसको कहेंगे। यानी कोई काला है, कोई कुबड़ा है, तो उसको गुण निमित्तक नाम कहेंगे। समझे ना, ये बहुत होशियार है। और परस्पंद अर्थात हलन चलन रूप अवस्था को क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया निमित्त से भी हम नाम रख सकते हैं। यानी उसके हम कहते कोई प्रोफेशन क्या है, तो गाना बजाता है तो गायक कहेंगे, किसी को नर्तक कहेंगे, तो उसकी वो क्रिया विशेष हो गई। यानी नाम रखने के लिए ये चार बातें हो सकती है, जाति की अपेक्षा नाम रख सकते हैं, द्रव्य की अपेक्षा नाम रख सकते हैं, गुण की अपेक्षा। द्रव्य की अपेक्षा नहीं, उसके साथ हमें ये चश्मे वाला है, ये दंड वाला है,
द्रव्य की बात नहीं समझ में।
देखो देखो आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखो उन चार प्रकार के निमित्तों में से, अब ये जाति की अपेक्षा कौन कौन से नाम होते हैं, तो गौ यानी गाय, मनुष्य, घट पट स्तंभ वेत इत्यादि जाति निमित्तक नाम है। ये वस्त्र है, ये बर्तन है, ये क्या है, वो सारे जाति निमित्तक नाम है उसके। क्योंकि गौ मनुष्यादि संज्ञाए, गौ मनुष्यादि जाति में उत्पन्न होने से प्रचलित है। ये समझ में आई बात, जाति की बात ख्याल में आई। दूसरी बात द्रव्य की थी, द्रव्य ने उसके संयोग में कौन सा द्रव्य है या उसके समवाय किसके साथ वो समन्वित हो गया है, उसकी अपेक्षा से उसके नाम रख सकते हैं। तो देखो दंडी, दंडी यानी वो काठी वाला, छत्री यानी छत्र वाला वो छत्री, मौली, मौली यानी मुकुट वाला। मौली शब्द कहाँ सुना है, मुकुट मौली मणि प्रवाणा है, वक्ता मन में हाँ उनको भी याद है। इत्यादि संयोग द्रव्य निमित्तक नाम है, यानी उनके संयोग में ये द्रव्य है, संयोग में कोई पदार्थ है उसके नाम, उसके अनुसार उनका नाम रखा है। क्योंकि दंडा यानी दंडा के संयोग से दंडी, छत्री के संयोग से वो छत्री या छत्र के, मुकुट इत्यादि स्वतंत्र सत्ता वाले पदार्थ है, यानी वो मनुष्य से वो भिन्न है, फिर भी वो पदार्थों के कारण इसका नाम रख दिया हमने। और उनके संयोग से दंडी, छत्री, मौली इत्यादि नाम व्यवहार में आते हैं, यानी वो पदार्थ उससे भिन्न है। अब शरीर का ही अंग कैसा हो जाता है, वो समवाय द्रव्य कहेंगे उसको। देखो गलगंड, काना, कुबड़ा इत्यादि समवाय द्रव्य निमित्तक नाम है। क्योंकि जिसके लिए गलगंड इस नाम का उपयोग किया जाता है उससे गले का गंड भिन्न सत्ता वाला नहीं है। ये गले में ऐसा वो गाढ़ जैसा आता है ना बना, उसको गलगंड कहते हैं। यानी किसी को लंगड़ा कहना, कुबड़ा कहना, वो क्या है, वो शरीर उससे भिन्न नहीं है। ये हमने जो दंड है, छत्री है, उससे भिन्न पदार्थ था, इसलिए उसको संयोग द्रव्य कहा था। और ये समवाय द्रव्य कहा, क्योंकि उससे वो उसके शरीर का अभिन्न अंग है, इसलिए। इसी प्रकार काना कुबड़ा आदि नाम समझ लेना चाहिए। ये द्रव्य निमित्तक नाम हो गए। अब गुण निमित्तक नाम कैसे हो सकते हैं? कृष्ण रुद्र इत्यादि गुण निमित्तक नाम है, यानी काला लाल वगैरह क्या कहेंगे हम उसको, क्योंकि कृष्ण आदि गुणों के निमित्त से उन गुण वाले द्रव्यों में ये नाम व्यवहार में आते हैं। जो काला है उसको कृष्ण कहना, लाल है वो रुधिर कहना, जैसे खून के लिए भी रुधिर शब्द आता है क्योंकि उसका कलर है ना, कलर के अनुसार उसका नाम पड़ गया। गायक नर्तक इत्यादि क्रिया निमित्तक नाम है, क्योंकि गाना नाचना आदि क्रियाओं के निमित्त से गायक नर्तक आदि नाम व्यवहार में आते हैं। इस तरह जाति आदि उन चार निमित्तों को छोड़कर, कौन से चार निमित्त देखे अभी हमने? जाति, द्रव्य, द्रव्य भी संयोग और समवाय वाले लिए, गुण और उसकी क्रिया, इसके कारण नाम हो सकते हैं। यानी उस नाम के उसमें ऐसे नाम क्यों पड़ा, तो उसमें ऐसी कोई बातें पाई जाती हैं। तो कहते इसको छोड़कर, यानी ऐसा कोई उसमें जाति भी नहीं है, ऐसा कोई संयोग नहीं है, ऐसा कोई उसमें विशेषताएं नहीं है, फिर भी हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, इसको कहते हैं उन चार निमित्तों को छोड़कर संज्ञा की प्रवृत्ति में, यानी नाम रखने में अन्य कोई निमित्त नहीं है। किसी भी निमित्त बिना हम, इधर हम घर में बच्चा पैदा हुआ तो हम क्या नाम रखे, चलता ना कितनी चर्चा चलती है हा? तो उसके जरूरी नहीं कि उसके उसमें कुछ गुण है या कुछ है। अब ये पहले में पहले बताया कि नाम मंगल किसको कहना, आगे पढ़ते हैं। वाच्यार्थ अर्थात शब्दार्थ की अपेक्षा रहित मंगल शब्द नाम मंगल है। वाच्यार्थ ने ये मंगल शब्द है और उसका जो मंगल रूप जो अर्थ है, तो कहते हैं इसे शब्दार्थ की अपेक्षा रहित मंगल शब्द नाम मंगल है। यानी हम वो व्यक्ति का रखो या किसी पदार्थ का रखो, या मंगल केवल कह दिया हमने, ये नाम मंगल है। उसमें वो वस्तु या कोई चीज मंगल होनी चाहिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मंगल यानी वो तो पवित्र कहो या वो शुभ ऐसी कोई है, उसको भी मंगल द्रव्य कहते हैं, तो ऐसी कोई नहीं है, फिर भी हम उसको मंगल कह सकते हैं। उस मंगल का आधार आठ प्रकार का है। अब उसकी चर्चा भी यहाँ, जैसे एक जीव अनेक जीव, एक अजीव अनेक अजीव, यहाँ तो सिंगल सिंगल लिए, जीव और अजीव लिए, जीव में एक और अनेक लिए, अजीव में भी एक अनेक लिए, अब उनके कॉम्बिनेशन लेंगे, एक जीव और एक अजीव और डाला है उसमें, और ये मिलकर ये पांचवा भंग हुआ। अनेक जीव और एक अजीव, देखो पहले जीव को एक रखा और एक जीव के साथ दो कॉम्बिनेशन, एक अजीव या अनेक अजीव, ये पांच और छह नंबर हो गए। फिर जीव, एक जीव लिया और अनेक अजीव लिए, अनेक जीव लिए और अनेक अजीव लिए, यानी पांच और छह में अजीव को एक रखा था और जीव के एक अनेक भेद किए थे। सात आठ में अजीव को अनेक रखा और जीव के एक अनेक भेद कर दिए। अब विशेषार्थ मंगल के, ये ऐसे हमने आठ भंग अलग अलग उसमें भी देखे थे बहुत बार पहले, आपको शायद याद नहीं होगा, ये बंधक या प्रकरण में या अलग अलग प्रकरणों में, जहाँ वो सांतर निरंतर मार्ग, सांतर मार्गणाएं होती है ना, जैसे मनुष्य अपर्याप्त है, तो मनुष्य अपर्याप्त में तो किसी प्रकृति का बंध करने वाला एक ही जीव हो सकता है, बंद करने वाला एक है, नहीं बंद करने वाले अनेक, इस तरह से उन्होंने कॉम्बिनेशन किए थे। ऐसे ये कॉम्बिनेशन देखो अभी इसका खुलासा बता रहे हैं, क्या कहते हैं विशेषार्थ में, मंगल के लिए आधार या आश्रय आठ प्रकार का होता है, जिसका खुलासा इस प्रकार समझना चाहिए। मैंने एक जीव के आधार से जो मंगल है, साक्षात एक जिनेन्द्र देव के आश्रय से जो मंगल किया जाता है, उसे एक जीवाश्रित मंगल कहते हैं। यहाँ जिनेन्द्र देव के स्थान पर एक जिनयति भी लिया जा सकता है। मैंने एक मुनिराज, अनेक यतियों के आश्रय से जो मंगल किया जाता है, उसे अनेक जीवाश्रित मंगल कहते हैं। अब अजीव की बात है, एक जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के आश्रय से जो मंगल किया जाता है, उसे एक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। और अनेक जिन प्रतिमाओं के आश्रय से जो मंगल किया जाता है, उसे अनेक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। ये तो चारों बातें समझ में, उसको सिंगल सिंगल ही, एक जीव अनेक जीव, एक अजीव अनेक अजीव। अब पांचवा नंबर पर, एक जिनेन्द्र देव और एक ही उनकी प्रतिमा के आश्रय से एक ही समय जो मंगल किया जाता है, उसे एक जीव और एक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। अब अनेक की बात, अनेक यति और एक जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के आश्रय से एक ही समय जो मंगल किया जाता है, उसे अनेक जीव और एक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। क्योंकि जिनेन्द्र देव की प्रतिमा एक ली और यति अनेक लिए। अब एक जिनेन्द्र देव और अनेक जिन प्रतिमाओं के आश्रय से एक ही समय जो मंगल किया जाता है, उसे एक जीव और अनेक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। और अंत में अनेक यति और अनेक जिन प्रतिमाओं के आश्रय से एक ही समय जो मंगल किया जाता है, उसे अनेक जीव और अनेक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। यानी यहाँ पर ये जो नाम मंगल है, उसके ये आठ प्रकार के आधार बताए। अब स्थापना मंगल को कहेंगे। उन नामादि मंगलों में से अब स्थापना मंगल को बतलाते हैं। नामादि में नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देखे थे, उसमें दूसरे प्रकार का स्थापना मंगल कहने वाले। ये निक्षेपों की चर्चा चले, मंगल पर निक्षेप लगा रहे हैं। किसी नाम को धारण करने वाले दूसरे पदार्थ की वह यह है, इस प्रकार स्थापना करने को स्थापना कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी नाम को धारण करने वाले दूसरे पदार्थ की, जैसे हमारा लौकिक का जो, हम ये मंगल की बात छोड़ देते हैं, जिन प्रतिमा जो है उसमें हमने ये महावीर भगवान है ऐसे हम उसमें स्थापना करते, वो स्थापना कहेंगे उसको, स्थापना निक्षेप। वो शतरंज के खेल में वो होते हैं ना, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये ऊंट है कहते हैं, ये प्यादे है, ये राजा है, ये वजीर है, ये क्या किया हमने? स्थापना की, उसको अतदाकार स्थापना कहते हैं। और जिन प्रतिमा जिनेन्द्र भगवान जैसी बहना आई हमने, तो उसको तदाकार स्थापना कहते हैं। ये बताएंगे, ये दो प्रकार की होती, तदाकार अतदाकार। यानी यह वह है ऐसा हमने उसमें निश्चित किया, उसको कहेंगे स्थापना निक्षेप। अब यहाँ स्थापना मंगल की बात करें, किसी नाम को धारण करने वाले दूसरे पदार्थ की वह यह है, इस प्रकार स्थापना करने को स्थापना कहते हैं। वह स्थापना दो प्रकार की है, सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना। यहाँ आकार की बात नहीं ली है, भाव की बात ली है, सद्भाव और असद्भाव। इन दोनों में से जिस वस्तु की स्थापना की जाती है, उसके आकार को धारण करने वाली वस्तु में सद्भाव स्थापना समझना चाहिए, तथा जिस वस्तु की स्थापना की जाती है, उसके आकार से रहित वस्तु में असद्भाव स्थापना जानना चाहिए। ये अभी हमने इसको उदाहरण लिया ना, कि जिस वस्तु की स्थापना की जाती है, उसके आकार को धारण करने वाली वस्तु। यानी हमें महावीर भगवान की स्थापना करनी है, तो मनुष्य के आकार को धारण करने वाली मूर्ति में हमने उनकी स्थापना की, वो हुआ तदाकार या सद्भाव स्थापना। अब ऐसे भी पद्धति थी ना, कि मूर्ति नहीं है तो कोई लौंग वो ठौना में रख दी, और ये हमने स्थापना की, वो क्या हुआ?
हाँ,
अतदाकार या असद भाव स्थापना हो जाएगी उसमें। लेखनी से लिखकर अर्थात चित्र बनाकर और खनन अर्थात छैनी टांकी आदि के द्वारा, एक तो चित्र है और दूसरा है शिल्प, क्योंकि मूर्तियां बनाते हैं ना, राजा की बनाई, रानी की, हमें शिवाजी महाराज की बनाई, वो क्या है? हाँ, उसका शिवाजी महाराज के चित्र को भी शिवाजी जी महाराज कह रहे हैं, वो शिवाजी महाराज नहीं है, उनको हम शिवाजी महाराज कहते हैं, उनकी वो उसका पुतला बनाए उनको हम शिवाजी महाराज कहते हैं। तो छैनी और टांकी आदि के द्वारा, बंधन अर्थात चिनाई लेप के द्वारा, ये समझते हैं ना, लेप
मिट्टी के,
यानी मिट्टी के बनाते हो लेप के द्वारा बनाए, और जो टांकी से उतारते हो पत्थर में बनाते हो तो टांकी से छीनी से बनाते, और लेप यानी ये तो कागज का लगदा उसका भी बनाते हैं, या कोई मिट्टी का बनाते हैं, शाड़ू का बनाते हैं, प्लास्टर पेरिस का बनाते हैं, उसको कहेंगे चिनाई या लेप के द्वारा। तथा क्षेपण अर्थात सांचे आदि में ढलाई आदि के द्वारा, मोल्ड बनाते हैं ना वो, तो सांचे में उसको डालते हैं, वो मीन मीन का भी बनता है, मोम का और अन्य अन्य चीजों का, इनके द्वारा मूर्ति बनाकर स्थापित किए गए, और जिसमें बुद्धि से अनेक प्रकार के मंगल रूप अर्थ के सूचक गुण समूहों की कल्पना की गई, यानी उनके गुणों की उसमें हमने कल्पना करी, जो मंगल प्रतीत होने वाले उस गुण उनमें हमने कल्पना कर दी। ऐसे मंगल पर्याय से परिणत जीव के रूप को अर्थात तदाकार आकृति को सद्भाव स्थापना मंगल कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, बुद्धि से अनेक प्रकार के मंगल रूप अर्थ के सूचक गुण समूहों की कल्पना की गई। जैसे हम यहाँ जिनेन्द्र भगवान की बात है, जिनेन्द्र भगवान तो ये जीव को साक्षात हमने जिनेन्द्र भगवान कह दिया, परंतु उनकी स्थापना हम किसी चीज में कर रहे हैं, तो उसमें हमने वो वितरागता सर्वज्ञता इन गुणों का हमने कल्पना कर ली है हमने, इसलिए जिनेन्द्र प्रतिमा के सामने साक्षात जिनेन्द्र भगवान है इस तरह से हम उनकी पूजन वगैरह करते हैं।
वो वितरागी है, सर्वज्ञ,
हाँ वितरागी है, सर्वज्ञ है, उनके सारे 18 दोष रहती है, सब गुणों की हमने वहां स्थापना कर दी। अब 21 पेज पर आ गए। नमस्कार आदि करते हुए जीव के आकार से रहित अक्ष अर्थात शतरंज की गोटों में, वराड़क अर्थात कौड़ियों में, तथा इसी प्रकार की अन्य अतदाकार वस्तुओं में मंगल पर्याय से परिणत जीव के गुण स्वरूप की बुद्धि से कल्पना करना असद्भाव स्थापना मंगल है। अब यह ना रेगुलर बताना है तो हम शतरंज की बात करते हैं, परंतु उसमें किसी को मंगल कह देना या मंगल की स्थापना कर देना, ये स्थापना मंगल है। विशेषार्थ, जैसे शतरंज आदि के खेल में राजा मंत्री आदि की और खेलने की कौड़ी व पासों में संख्या की आरोपना होती है। नहीं समझे, खेला है क्या कभी? नहीं, कितना दान हो तो हम वो कौड़ी डालते हैं, ये उल्टा पड़े तो क्या उसकी वैल्यू, चूक सीधा पड़े तो क्या उसके नक्की होती है बातें, उसमें संख्या की स्थापना कर दी हमने, यानी संख्या की आरोपना होती है। उसी प्रकार मंगल पर्याय परिणत जीव और उसके गुणों की बुद्धि के द्वारा की हुई स्थापना को असद्भाव स्थापना मंगल कहते हैं। ये जो हम लौंग वगैरह में करते हैं उसको कह सकते हैं, क्योंकि जीव की स्थापना हमने कर दी हुआ। ऐसे भी पहले के जमाने में तो लड़ाई को राजकुमार गया है लड़ाई करने को, और सब सात भाई उनके एक साथ शादी थी, तो सातवां भाई तो था नहीं, तो उसको क्या रखा उसमें, उसकी तलवार रखी। ऐसे आपने सुने हुए स्टोरी? या कभी कभी क्या है कि जहाँ यानी पति पत्नी को बैठना है तो पत्नी किसी कारणवश नहीं आ सकती, तो वो सुपारी रख देते हैं। ये क्या हुआ? बुद्धि के द्वारा वहां स्थापना कर दी। ये लौकिक में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, परंतु उसको निक्षेप के नाम हमको मालूम नहीं है, ये निक्षेप हो रहा है वहाँ। तो हमने कौन से दो बातें देखे, नाम मंगल और स्थापना मंगल। तो स्थापना के दो भेद करते। अब तीसरी बात, अभी द्रव्य क्षेत्र काल भावने द्रव्य मंगल की बात चलेगी। अब द्रव्य मंगल का कथन करते हैं। आगे होने वाली मंगल पर्याय को ग्रहण करने के सन्मुख हुए द्रव्य को उस पर्याय की अपेक्षा द्रव्य मंगल कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, हमारे श्रेणिक राजा हमारे ने अभी वो है तो पहले नरक के नारकी शायद समय दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे और वहां से यहाँ आएंगे भरत क्षेत्र में और पहले तीर्थंकर हो गए। तो ऐसा ही है ना, उस पर्याय की अपेक्षा द्रव्य मंगल कहते हैं। आगे होने वाली पर्याय की अपेक्षा उनको अभी तीर्थंकर कहना, या कोई बालक है अभी उसको आगे राजा होगा तो अभी उसको राजा कहना, सेठ के बालक को अभी सेठ कहना, नौकर कहते ना, वो क्या हुआ, वो वही का तो वही द्रव्य जो आगे चलकर होने वाला है उस अपेक्षा उसको वो नाम से बोल सकते हैं। यहाँ वही कहते, यहाँ मंगल की बात चल रही। तो मंगल पर्याय रूप से परिणत होने वाले द्रव्य को, अभी वो पर्याय नहीं है, उसको मंगल कह दे, ये द्रव्य मंगल है। देखो फिर पढ़ते हैं, आगे होने वाली मंगल पर्याय को ग्रहण करने के सन्मुख हुए द्रव्य को उस पर्याय की अपेक्षा द्रव्य मंगल कहते हैं। द्रव्य तो वही का वही है, अभी वर्तमान में वो पर्याय नहीं है, भविष्य में होने वाली है, इसलिए उस द्रव्य को उस आगामी पर्याय की अपेक्षा अभी वर्तमान में उसको कह सकते हैं। अथवा वर्तमान पर्याय की विवक्षा से रहित द्रव्य को ही द्रव्य मंगल कहते हैं।
तीर्थंकर होने वाला
है, हाँ, तो उसको वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से रहित कर दिया उसके। वह द्रव्य मंगल आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार का है। अब देखो यहाँ से थोड़ी उसके भेद प्रभेद चलेंगे। द्रव्य की अपेक्षा जो है, यानी जो द्रव्य निक्षेप है, द्रव्य निक्षेप के पहले में पहले दो भेद लिख रहे हैं हम, आगम और नो आगम। यानी उसको कहेंगे आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप। मंगल की बात है तो आगम द्रव्य मंगल और नो आगम द्रव्य मंगल। यानी द्रव्य निक्षेप, आप अपने पास एक चार्ट बनाना, द्रव्य निक्षेप के दो मूल भेद। अब यहाँ निक्षेप लिखा है ना, तो जिसकी बात चल रही है, अभी हम मंगल की बात करेंगे तो द्रव्य मंगल कहेंगे, यदि हम ज्ञान की बात करेंगे तो द्रव्य ज्ञान ऐसा कहेंगे, या कुछ कर्म की बात है या अन्य भी कुछ जो होगा, तो हम द्रव्य निक्षेप यहाँ लिख रहे हैं। उसके दो भेद कौन से देखे,
आगम,
आगम यानी आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। ये पूरा नो आगम द्रव्य निक्षेप इसे पूरा बोलना चाहिए। यानी अपने अभी मंगल का प्रकरण है तो हम आगम द्रव्य मंगल कहेंगे और नो आगम द्रव्य मंगल कहेंगे, ये मूल भेद दो। अब आगम किसको कहना और नो आगम किसको, आगम यानी उस संबंधी जो हमारे शास्त्र है उसको आगम कहेंगे, तो उसकी बात अभी हम पढ़ते। देखो के द्रव्य मंगल आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार का है। आगम सिद्धांत और प्रवचन, ये शब्द एकार्थवाची है, जिसको हम आगम कहते नहीं, हमारा जो द्रव्य श्रुत है उसी को आगम कहेंगे। आगम से भिन्न पदार्थ को नो आगम कहते हैं, जो आगम नहीं है वो नो आगम, वो कुछ भी हो सकता है, आगम छोड़कर बाकी सब नो आगम। मंगल प्रावृत, प्रावृत यानी उसको विषय करने, जैसे हम पाहुड़ कहते हैं उस विषय पर जो आगम की रचना है, उस विषय का जिसमें प्ररूपण है, ऐसा आगम, तो कहते हैं मंगल प्रावृत, अर्थात मंगल विषय का प्रतिपादन करने वाले, शास्त्र को जानने वाले। अब जीवों को लेना है, मंगल जो है द्रव्य मंगल यानी उस द्रव्य को मंगल कह रहे हैं, उस जीव को हम मंगल कह रहे हैं, तो अभी जीव कैसे हो सकते हैं कि मंगल संबंधी जो शास्त्र है आगम है उसको जानने वाले हैं। किंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित जीव को आगम द्रव्य मंगल कहते हैं, क्योंकि जब भाव मंगल की बात आएगी उसमें भी आगम और नो आगम की बात करेंगे। वहां आगम में वो मंगल प्रावृत्त को जानने वाला है और वर्तमान में उसमें उपयोग है, ऐसा जीव लेंगे। यहाँ द्रव्य में क्या लिया है, वो मंगल प्रावृत्त को जानने वाला है, वर्तमान में उसमें उपयोग नहीं है, यानी उसने उस शास्त्र का अभ्यास किया है, वर्तमान में न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या भोजन कर रहा है, तो उसका उपयोग उसमें नहीं है, ऐसा जीव लिया। परंतु वो उस मंगल प्रावृत्त का जानकार है, इसलिए उसको कहेंगे द्रव्य आगम मंगल या आगम द्रव्य मंगल कहेंगे। आगम द्रव्य निक्षेप का नाम है और नो आगम द्रव्य निक्षेप बाद में करेंगे, ख्याल में आई ये बात। आगम का अर्थ है उस संबंधी आगम को जानने वाला, द्रव्य निक्षेप में उसके उपयोग नहीं वाला लेना, भाव निक्षेप में उसके उपयोग वाला लेंगे, वो बाद में लेंगे। देखो मंगल प्रावृत अर्थात मंगल विषय का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को जानने वाले किंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित जीव को, यहाँ जीव को बात है, आगम द्रव्य मंगल कहते हैं, क्योंकि जानने वाला तो जीव ही हो सकता है ना, इसलिए आगम द्रव्य मंगल का। अथवा मंगल विषय के प्रतिपादक शास्त्र की शब्द रचना को आगम द्रव्य मंगल कहते हैं, अथवा क्योंकि वो अजीव में घटा है ना, उन्होंने आगम द्रव्य मंगल है, क्योंकि वो तो आगम को ही आगम द्रव्य मंगल कहते हैं,
जीव को भी द्रव्य मंगल
और अजीव को भी ले, या अजीव को ले लिया आगम द्रव्य मंगल में, अजीव को लिया। अथवा मंगल विषय को प्रतिपादन करने वाले उस मंगल प्रावृत शास्त्र के अर्थ की स्थापना रूप अक्षरों की रचना को आगम द्रव्य मंगल कहते हैं। ऊपर शास्त्र की शब्द रचना को लिया, बोलना, अच्छा स्थापना रूप अक्षरों की रचना की, यानी वो तो लिपिबद्ध किया, स्थापना रूप अक्षरों की है ना, यानी लिखित रूप से, जैसे हम बोलते हैं अ आ ई, बोलना या बोलना हुआ, परंतु उसको हमें उसको विशिष्ट आकार के अक्षरों में उसको अ आ कह दिया, जैसे मराठी लिपि देवनागरी उसमें अ आ अलग पद्धति से लिखेंगे, गुजराती लिपि में उसी को, ध्वनि तो वही है अ आ ई है, उसको अलग पद्धति से लिखेंगे, जैसे मराठी में ई कैसे लिखते हैं और गुजराती में ई कैसे लिखते हैं, वो अक्षर रूप ऐसी स्थापना हुई। विशेषार्थ
यहाँ दो ही भेद बताए ना, जीव को द्रव्य आगम द्रव्य मंगल कहा और शब्द की रचना जो है उसको,
उसको भी कहा,
यानी वो जो
अभी नो आगम की बात नहीं ली है।
एक मिनट, शब्द रचना को द्रव्य आगम द्रव्य मंगल कहा, लेकिन वो प्रतिपादन करने वाले शब्द है उसको भी,
यानी हाँ यहाँ क्या कहते जो व्याख्यान है ना बोलने, दिव्य ध्वनि हम कहेंगे, वाणी जो है
हाँ।
वाणी को भी आगम द्रव्य मंगल कहेंगे।
अच्छा,
और जो लिखा भी आचार्यों ने मौखिक बताया वो भी आगम द्रव्य मंगल होगा, और उसको शब्दों में रचित किया वो भी आगम द्रव्य मंगल कहेंगे। जैसे गुरुदेव ने बताया बोला और अभी उनके सब शब्दशः
लिखित
रूप से आ गए, उन दोनों को हम आगम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल
स्वामी जी समय सार को जानते थे और बोलते थे, अन्य कहीं उपयोग कहीं दूसरे जगह लगा था
हाँ।
तो उसको भी द्रव्य आगम
आगम आगम
द्रव्य, द्रव्य मंगल हाँ, कहेंगे
हाँ।
यानी तीन बातें हो गई ना, एक जीव के बाबेशा से,
जीव है
लेकिन
जानने वाला है उसका उपयोग
नहीं लगा,
यानी आगम को जानने वाला जीव उसमें उपयोग से रही, एक लिया।
फिर
यह जो आगम है तो साक्षात जो आगम है या तो शब्द रूप शास्त्र की रचना या जो बोला जाता है उसको
प्रतिपादन करने वाले शब्द जो है
हाँ, शब्द है
और जो रचित लिखित शब्द
लिखित शब्द है,
ये
तीन बरोबर.
अभी ये टाइम जरा जरा समझ रहे हैं.
तभी भी समझा तो बहुत दिन हुए ना. अभी 2003 में चालू किया था इसको. देखो विशेषण, आगे होने वाले पर्याय के सन्मुख अथवा वर्तमान पर्याय की विवक्षा से रहित, अर्थात भूत या भविष्यत पर्याय की विवक्षा से द्रव्य को द्रव्य मंगल कहा है और तद विषय ज्ञान को आगम कहा है. इससे यह तात्पर्य निकलता है, जो मंगल विषयक शास्त्र का जानकार वर्तमान उसके उपयोग से रहित हो वह आगम द्रव्य मंगल है. उस जीव को यहाँ आगम द्रव्य मंगल कहा. यहाँ पर जो मंगल विषयक, देखो विशेषात के पहले फिर दोबारा पढ़ते हैं. आगे होने वाले पर्याय के सन्मुख, पहले हमने ऊपर ऊपर जो बताए थे ना.
देखो ऐसा आप पढ़े तो बराबर लगता है क्या, आगे होने वाली पर्याय के सन्मुख द्रव्य को द्रव्य मंगल कहा.
हाँ.
अथवा
वर्तमान पर्याय की विवक्षा से रहित, वर्तमान की विवक्षा नहीं परंतु वो भूत या भविष्य की पर्याय होने वाले उसकी विवक्षा से द्रव्य को द्रव्य मंगल कहा जाता है. यहाँ ज्ञान के उपयोग की बात मत लानी. पहले तो जनरल द्रव्य मंगल की बात की, फिर उसके आगम नो आगम भेद की है. ये ऊपर जो हम पढ़ चुके हैं उसका ये विशेषार्थ हो रहा है. ऊपर से तीसरे पैराग्राफ में क्या है, अब द्रव्य मंगल का कथन करते लिखा है ना, उसके आगे क्या लिखा है, आगे होने वाली मंगल पर्याय को ग्रहण करने के सन्मुख हुए द्रव्य को, यानी भविष्य में उसकी मंगल पर्याय होने वाली है उसको अभी भी द्रव्य मंगल कहेंगे. जैसे वो आगे जाके तीर्थंकर होगा उसको वर्तमान में तीर्थंकर का द्रव्य है कहते हैं, वो अभी वर्तमान पर्याय की उसका बहुमान नहीं है, बहुमान भविष्य की है परंतु द्रव्य वही का वही है और उस द्रव्य में वो पर्याय होने वाली है, तो उस जीव को वर्तमान में उस नाम से कहना. ख्याल में आई ना, द्रव्य वही का वही है उसको अभी वर्तमान में द्रव्य मंगल कहेंगे. ये तो द्रव्य मंगल का भेद किए बिना एक सामान्य कथन हुआ कि उसके वर्तमान पर्याय की विवक्षा नहीं लेनी है. भूत भविष्य की हो सकती है या भविष्य के सन्मुख वाली हो सकती है, तो उसको हम कहेंगे द्रव्य मंगल. द्रव्य मंगल अब उसके दो भेद करेंगे, आगम और नो आगम. अब कहते हैं तद विषय ज्ञान को आगम कहा है. अब यहाँ हमारा प्रकरण मंगल का है तो मंगल विषयक आगम द्रव्य को यानी शास्त्र को या ज्ञान को आगम कहा. मंगल विषयक जो हमारे शास्त्र रचना हुई है उसका जो ज्ञान है उस ज्ञान को ही आगम कहा है. इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जो मंगल विषयक शास्त्र का जानकार वर्तमान उसके उपयोग से रहित हो वह आगम द्रव्य मंगल है. क्योंकि वर्तमान की वो बात नहीं है, द्रव्य वही का वही लेना है. वर्तमान के अगर लेते तो वो भाव में चला जाएगा, वो भाव मंगल में आएगा. यह तो भूत या भविष्य की पर्याय हो या उसके वर्तमान पर्याय की कोई विवक्षा नहीं ली यहाँ पर, तो उसमें जानकार तो है परंतु उसका उसमें उपयोग नहीं है, उसको कहेंगे आगम द्रव्य मंगल. यहाँ पर जो मंगल विषय शास्त्र की 22 पेज पर आना, शब्द रचना अथवा मंगल शास्त्र के अर्थ की स्थापना रूप अक्षरों की रचना को, देखो एक तो शब्द रचना यानी मौखिक जो हम कहते वो, और स्थापना रूप अक्षर यानी लिखित रूप से होगी क्योंकि अक्षरों में हम उसके उस स्वर की स्थापना करते हैं. क कैसे लिखना, ख कैसे लिखना, उसकी अलग अलग स्थापना होती है. इस रचना को आगम द्रव्य मंगल कहा है वह उपचार से ही समझना चाहिए क्योंकि ज्ञान को हम आगम द्रव्य मंगल कहेंगे पर ये शब्दों को भी कह देते हैं वो उपचार है, उसमें वो उपचार हुआ. क्योंकि मंगल विषयक शास्त्र ज्ञान में मंगल विषयक शास्त्र की शब्द रचना और मंगल शास्त्र के अर्थ की स्थापना रूप अक्षरों की रचना ये मुख्य रूप से बाह्य निमित्त पड़ते हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये मंगल विषयक शास्त्रों का हमने ज्ञान किया, कैसे किया? तो भगवान की वाणी से सुनकर किया, ये हमने शास्त्र पढ़कर किया, तो ये उसमें बाह्य निमित्त है। समझ में आई बात? फिर से पढ़ती हूँ। इनको उपचार से मंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्ञान को यहाँ आगम कहा या मंगल कहा, उसमें ये निमित्त है, इसलिए इन पर भी उपचार किया, इनको भी मंगल कह दिया, इसको भी आगम द्रव्य मंगल कह दिया। फिर सेकंड लाइन, उपचार क्यों किया? क्योंकि मंगल विषयक शास्त्र ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान तो जीव को हुआ, उसमें निमित्त क्या है? मंगल विषयक शास्त्र की शब्द रचना और मंगल शास्त्र के अर्थ की स्थापना रूप अक्षरों की रचना, ये मुख्य रूप से बाह्य निमित्त पड़ते हैं। वैसे तो सहकारी कारण शरीरादिक और भी होते हैं, परंतु वे मुख्य बाह्य निमित्त न होने से उनका ग्रहण नो आगम में किया जाता है। वो अभी हमने नो आगम की बात नहीं उठाई है, वो जानने वाले जीव के शरीर को नो आगम कहेंगे। वो अलग अलग, वो तो बात हम बाद में पढ़ेंगे। अथवा मंगल विषयक शास्त्र ज्ञान से और दूसरे बाह्य निमित्तों की अपेक्षा इन दोनों बाह्य निमित्तों की विशेषता दिखाने के प्रयोजन से इन दोनों बाह्य निमित्तों का आगम द्रव्य मंगल में ग्रहण कर लिया है, अथवा कह के उन्होंने उसको भी ग्रहण कर लिया, यानी वो निमित्तों पर उपचार से आरोप आता है, इसलिए उसको भी आगम द्रव्य मंगल कह देते हैं। इतनी बात हमने पढ़ ली। यानी पहला हमने नाम मंगल देखा, स्थापना मंगल देखा। द्रव्य मंगल में दो भेद किए, आगम द्रव्य मंगल और अभी नो आगम द्रव्य मंगल की चर्चा करेंगे। आगम द्रव्य मंगल में मंगल संबंधी जो शास्त्र रचना है उसको जानने वाला जीव लिया, मंगल संबंधी आगम को जानने वाले जीव को, परंतु कंडीशन क्या है, उसमें वर्तमान में उसमें उपयोग नहीं है, उस जीव को ही आगम द्रव्य मंगल कह देते हैं। अब हमको नो आगम द्रव्य मंगल देखना है। देखो, नो आगम द्रव्य मंगल तीन प्रकार का है। अभी नो आगम द्रव्य मंगल में क्या लिया, वो जीव को नहीं लेना है। हाँ, तो उसमें क्या क्या लिया? ज्ञायक शरीर, भव्य या भावी और तद व्यतिरिक्त, उनमें जो ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य मंगल है वह भी तीन प्रकार का समझना चाहिए। देखो, ये ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य मंगल किसको कहा? नो आगम द्रव्य मंगल यानी जो जानकार नहीं है, जो जानता नहीं है। जानने वाला जीव था उसको तो आगम द्रव्य मंगल में ले लिया, उपयोग से रहित लिया, अभी उसमें नहीं उपयोग। अब ये जो जीव है उसका जो शरीर है वो तो कुछ नहीं जानता है, उसको नो आगम द्रव्य मंगल में लिया। अब ये शरीर के तीन भेद किए, यानी नो आगम के भी तीन भेद किए। एक है तो ज्ञायक शरीर, यानी वो जीव का शरीर, जानने वाले जीव का शरीर लिया। भव्य या भावी में जीव ही लिया, परंतु जो भविष्य में जानेगा वो है, अभी नहीं जान रहा, भविष्य में जानेगा वो जीव लिया। और तद व्यतिरिक्त ने इन दोनों के अलावा अन्य कुछ चीजें ली। अब उसकी चर्चा करेंगे। ज्ञायक शरीर की बात पहले उठा रहे हैं। ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य मंगल है, वो भी तीन प्रकार का है। ये किसको कहा हमने? जीव के शरीर को। तो जीव का शरीर भी तीन है, कौन सा? एक वर्तमान का है, एक भूतकाल का, एक भविष्यकाल का। तो कहते हैं मंगल विषयक शास्त्र का अथवा केवल ज्ञानादि रूप मंगल पर्याय का आधार होने से भावी शरीर, वर्तमान शरीर और अतीत शरीर, इस प्रकार ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य मंगल के तीन भेद हो जाते हैं। यानी वो जीव उस शरीर के आधार से अभी रह रहा है, वो वर्तमान का शरीर है, जो भूतकाल में उसने धारण किया था भूत का है, और जो वर्तमान भविष्य में धारण करेगा उसकी बात। शंका,
एक मिनट, फिर से ये पढ़ना।
फिर से
पूरा
नो आगम द्रव्य मंगल तीन प्रकार का है।
गायक शरीर भव्य,
गायक शरीर यानी उसको कैसे कहना, गायक शरीर नो आगम द्रव्य मंगल, भव्य या भावी नो आगम द्रव्य मंगल,
और
तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल, ये तीन भेद हुए ना।
समझ में।
अब उसमें से गायक शरीर नो आगम द्रव्य मंगल है, उसके भी तीन भेद करना है। के मंगल विषयक शास्त्र का अथवा केवल ज्ञानादि रूप मंगल पर्याय का आधार होने से भावी शरीर, वर्तमान शरीर और अतीत शरीर, इस प्रकार ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य मंगल के तीन भेद हो जाते हैं। जानने वाले जीव का शरीर लेना या वर्तमान का, भूत का, पूर्व पर्याय का या भविष्य का, ऐसे तीन उसमें ले सकते हैं। अब इसकी शंका प्रश्नकार है, प्रश्न उसका है, आधारभूत शरीर में आधेयभूत आत्मा का उपचार करके, यानी आधार में आधेय का उपचार किया, आधारभूत शरीर में आधेयभूत आत्मा का उपचार करके धारण की हुई मंगल पर्याय से परिणत जीव के शरीर को नो अगम ज्ञायक शरीर द्रव्य मंगल कहना तो उचित भी है, परंतु इन्हें कहते हैं कि अभी जो वर्तमान में शरीर है ना, तो उसको तो आप उसमें उपचार करो तो ठीक है। क्या कहा फिर से पढ़ते हैं, आधारभूत शरीर में आधेयभूत आत्मा, ये शंकाकार पूछ रहा है, जिसके आधार से जो रहता है, वो जो रहता है आधार से, उसको आधेय कहा, या शरीर को आधार कहा, आत्मा को आधेय कहा, ये भी उपचार है, परंतु ये हम कहने के लिए उपचार करके धारण की हुई मंगल पर्याय से परिणत जीव के शरीर को, वो जानने वाला तो आत्मा है पर वो शरीर में उपचार किया, इसने जाना, तो उसको तो नवागम ज्ञायक शरीर द्रव्य मंगल कहो तो कहो, वो तो हमको ठीक लगता है शंका करके, परंतु भावी और भूत शरीर को मंगल संज्ञा देना किस प्रकार, किसी प्रकार भी उचित नहीं है। वो तो पूर्व पर हमें कहा क्या बात थी, और वो भविष्य का शरीर तो जुदा ही होगा, उसमें क्यों उपचार कर रहे आप, ये कहना है उसका, क्योंकि उनमें मंगल रूप पर्याय के अस्तित्व का अभाव है। मंगल रूप पर्याय तो वहां है ही नहीं है, उस आत्मा में नहीं है, तो उस पर क्यों आप उसका उपचार कर रहे हैं। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि राज पर्याय का आधार होने से अनागत और अतीत जीव में भी जिस प्रकार राजा रूप व्यवहार की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार मंगल पर्याय से परिणत जीव का आधार होने से अतीत और अनागत शरीर में भी मंगल रूप व्यवहार हो सकता है। यानी वो जीव उस शरीर के आधार से था और वो अभी मंगल पर्याय रूप से परिणत है, इसे उस शरीर को भी ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य मंगल कहेंगे, भूतकाल के शरीर को भी कहेंगे। उसके लिए उदाहरण क्या दिया, राज पर्याय का आधार होने से, वो राजा था, अभी हम कहें हमारे कौन है, तो श्रेणिक राजा, श्रेणिक राजा कहा, अभी नारकी को भी श्रेणिक राजा कह रहे हैं, और हमारे भविष्य के तीर्थंकर को भी हम हमारे श्रेणिक राजा, पहले तीर्थंकर, तो ये अनाग यानी अतीत पर्याय को भी हम राजा कह रहे हैं, या जो अभी बालक है उसको भी, होने वाला है तो उसको भी राजा कह देते। ऐसे ही यहाँ पर मंगल रूप पर्याय से परिणत होने वाले जीव का आधार, भले वो भूतकाल का शरीर हो भविष्य काल का हो, जीव तो वही का वही है और उस जीव का वो आधार है, इसलिए उस शरीर को भी कह देंगे, ये कहना चाहते। विशेषार्थ, आगम के बाह्य सहकारी कारण होने से शरीर को नो आगम कहा गया है, यानी वो ज्ञायक शरीर में शरीर को बताया। अभी अन्य अभी होने की बातें, तीन भेद है, उसमें से पहला भेद चल रहा है, नौ आगम में पहला भेद है कौन सा, ज्ञायक शरीर, इसलिए शरीर को ही नौ आगम कहा गया। ज्ञायक शरीर यानी शरीर नहीं जान रहा है, ज्ञायक का शरीर, उसको ज्ञायक शरीर कह दिया। और उसमें अन्वय प्रत्यय की उपलब्धि होने से उसे द्रव्य कहा गया है। अन्वय प्रत्यय ने वो वही का वही की वो कंटिन्यूटी बात है। ये दोनों बातें अतीत, वर्तमान और अनागत, इन तीनों शरीरों में घटित होती है। जीव वही का वही है और वही उसके आधार है, इसलिए वो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों शरीरों में ये बात उपचरित हो सकती, घटित होती है। इसलिए इनमें मंगलपने का व्यवहार हो सकता है। इसका खुलासा इस प्रकार है, औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर मंगल विषयक शास्त्र के परिज्ञान में बाह्य सहकारी कारण है, क्योंकि इनके बिना कोई शास्त्र का अभ्यास ही नहीं कर सकता। यानी वो जीव अभी उस मनुष्य पर्याय में है या देव पर्याय में है, तो कहते उसके ये तीन शरीर को उपचार से कहते कि इसके बिना नहीं हो सकता। अब इनमें अरे वो तो भी तो इसमें तीर्थंकर के समोचरण में आते हैं ना, आगम का अभ्यास तो उनके भी होता है ना। हाँ, ऊपर भी कुछ होता होगा उनका, तो वहाँ पर भी कुछ ज्ञानी पाठी लोग हैं ना पूर्व भाव के। ऐसे ये द्रव्य शास्त्र की, द्रव्य श्रुत की,
हाँ
लिखित रूप से ऐसी बातें कुछ तो व्यवस्था होगी ना वहाँ पर भी। ये जो चर्चा करते सर्वार सिद्धि में भी, 33 सागर तक उसमें तो ये बात आई थी कि ये जो रचनाएं होती है ना उसमें अंदर, तो हाँ उसमें वो स्वाध्याय के कक्ष, क्रीड़ा के कक्ष, वो बात अलग है। हाँ हाँ वो स्वयं जाके उपदेश देते हैं, परंतु वहाँ पर भी आपस में जो चर्चा होती है उसमें भी कुछ शास्त्रों की तो बातें होगी वहाँ पर भी,
क्योंकि यहाँ दे रहे ना वैक्रियक और आहारक। आहार औदारिक तो मनुष्य के होगा, वैक्रियक तो देवों के,
देवों के होता है। हाँ
तो ये मंगल साधन के परिज्ञान में बाह्य सहकारी कारण,
बाह्य सहकारी कारण है।
अच्छा,
क्योंकि
अच्छा,
जानने वाला जीव है,
शास्त्र के परिज्ञान में
जानने वाला जीव है, तो उसके वो तो शरीर का धारी है, बस इतनी बात बताना है।
आपने जो बताया कि वो यहाँ देव आते हैं और उसका ज्ञान होता है
और वहाँ पर भी उनके चर्चा चलती है।
हाँ,
तो वहाँ पर भी
ये
अभी क्या होता होगा, एग्जैक्टली क्या है हम कैसे कहेंगे, परंतु कुछ तो व्यवस्था वहाँ
पर
भी होगी,
निकलता है कि होने चाहिए,
बिल्कुल होना चाहिए। नरक की बात नहीं है, देव वहाँ उपदेश देते वो बात अलग, वो तो मौखिक होगा, परंतु देवों में वहाँ कुछ तो बातें होगी ना जिनसे। और ये भी है जो लोकांतिक में भी वो द्वादशांग के पाठी होते ऐसा कहते हैं ना, भले वो पूर्व भव के भी हो सकते हैं, परंतु वहाँ पर भी कुछ, और इतने समोचरणों में आते हैं तो द्वादशांग के पाठी तो वहाँ से भी हो सकते हैं ना, उस संबंधी चर्चा होगी कुछ।
चलो केवल इमेजिनेशन से,
इमेजिनेशन अभी हम और क्या कह सकते हैं। अभी जैसे पहले तो ये लिखित रूप से है, अभी जो सीडी वगैरह बन रही है, जो ध्वनि की जो रिप्रोडक्शन हो रही है, वो तो हमने कभी सोचा था कि इस तरह से हो सकता है। अब इनमें अन्वय प्रत्यय कैसे पाया जाता है इसका खुलासा करते हैं। यानी अन्वय प्रत्यय ने वो वही का वही कैसे होता है, जिस शरीर से मैंने मंगल शास्त्र का अभ्यास किया था वही शरीर उक्त अभ्यास को पूरा करते समय भी विद्यमान है। इस प्रकार तो वर्तमान ज्ञायक शरीर में अन्वय प्रत्यय पाया जाता है। मंगल शास्त्र ज्ञान से उपयुक्त मेरा जो शरीर था, तद विषयक शास्त्र ज्ञान से रहित मेरे अब भी वही शरीर विद्यमान है। इस प्रकार अतीत ज्ञायक शरीर में अन्वय प्रत्यय की उपलब्धि होती है। अच्छा, यहाँ दूसरा लिया है कि जो भूतकाल में जो जान रहा था, देखो क्या कहा, मंगल शास्त्र ज्ञान से उपयुक्त जो मेरा जो शरीर था, यानी जो मंगल शास्त्र में जब मेरा उपयोग था वो जो शरीर था वो अतीत काल का, और उस तद्विषय शास्त्र ज्ञान से रहित मेरे अब भी वही शरीर विद्यमान है, यानी इसी भव में पूर्व में मैंने उसका अभ्यास किया था, अब उसका अभ्यास नहीं है, तो भी हमको उसको अतीत या एक शरीर कहें। अतीत काल में जान रहा था तब वो शरीर था। इस प्रकार अतीत ज्ञायक शरीर में अन्वय प्रत्यय की उपलब्धि होती है। ये वो अन्वयपना सिद्ध करना है, बस इतनी बात है उनको। मंगल शास्त्र ज्ञान के उपयोग से रहित मेरा जो शरीर है वही तद विषयक तत्व ज्ञान की उपयोग दशा में भी होगा। इस प्रकार अनागत ज्ञायक शरीर में अन्वय प्रत्यय की उपलब्धि बन जाती है। यानी एक मनुष्य शरीर की बात उन्होंने उठाई, इस पर ही भूत वर्तमान भविष्य की बात की। यानी पहले मैं कुछ नहीं जानती थी, शरीर यही था, अब जान रही हूँ तो शरीर यही, एक बात। पहले मैं जान रही थी, अब नहीं जान रही हूँ, शरीर वही का वही है, ऐसा भी ले लेना। अब तीसरी बात यहाँ देखते हैं, ये दो बातें हुई ना, ज्ञायक शरीर की बातें हो रही यहाँ पर, तो उसमें हमने देखा कि अतीत काल का, वर्तमान का और भविष्य का, ज्ञायक शरीर के ये तीन भेद बताए। जानने वाला तो जीव है, उसी जीव का ये पूर्व का शरीर, अभी का शरीर और भविष्य का शरीर। ये जरूरी नहीं है, भविष्य में यहाँ ली है। यहाँ उन्होंने उदाहरण देते हुए वैसा लिया है,
उदाहरण देते हुए कैसा दिया है, जो अभी मनुष्य शरीर है,
अभी मनुष्य पर्याय का ही, जैसे बचपन में नहीं जानता था वो अतीत शरीर हुआ, परंतु हम पूर्व भव के शरीर को भी ले सकते हैं।
ले सकते हैं। अच्छा।
ये पहले हमने देखा था, पहले है ना, अतीत शरीर में, हाँ, क्योंकि पूर्व भव के ही ले लेना है अतीत भव, अतीत में, तो ये उन्होंने सिद्ध करने के लिए वर्तमान एक शरीर पर सिद्ध किया, परंतु ये बात तो पूर्व शरीर में, क्योंकि पूर्व का शरीर उसने कैसे मरा था उस पर से हम कहते हैं, उसके भी भेद है, उसमें सिद्ध होता है कि ये पूर्व भव का शरीर लेना है। इस प्रकार अनागत ज्ञायक शरीर में अन्वय प्रत्यय की उपलब्धि। ये अन्वय प्रत्यय कैसे हो सकता है ये हमें समझ में आए, इसलिए उन्होंने इस मनुष्य भव के तीन प्रकार यानी तीन अवस्थाओं को लिया। वैसे तो यथार्थ में वो तो भूतकाल का भी पूर्व पर्याय का भी शरीर लेना उसमें, पूर्व भव का। इसलिए ये इसलिए के आगे लिखते हैं, वर्तमान शरीर की तरह अतीत और अनागत शरीर में भी, यानी वो दो भव अलग अलग लिए, मंगल रूप व्यवहार हो सकता है। इनमें से अतीत शरीर के तीन भेद, देखो हमने कहां से शुरुआत किया, द्रव्य आगम की बात चल रही, ये द्रव्य की बात चल रही, द्रव्य निक्षेप की, उसमें आगम और नो आगम दो भेद किए। आगम में तो जानने वाला जीव लिया, उपयोग से रहित वाला, और नो आगम में तीन भेद किए, तीन भेद किए, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर के अभी तीन भेद लिए, वर्तमान, भूत और भविष्य वाले। तो उसमें जो अतीत शरीर जो ज्ञायक है ना, तो अतीत ज्ञायक शरीर के तीन भेद है। अतीत शरीर ने पूर्व भव का शरीर, यानी वो किस रूप से मरे थे उसकी अपेक्षा से ये बात, वो शरीर च्युत चावित और त्यक्त। च्युत यानी वो अपने आप, वो अभी वो अपने काल पर मर गया तो उसको च्युत कहेंगे। तो कदली घात मरण के बिना पके हुए फल के समान, कर्म के उदय से झड़ने वाले, आयु कर्म के क्षय से अपने आप पतित शरीर को च्युत शरीर कहते हैं। यानी वो आयु पूरा हुआ और शरीर छूट गया, उसने दूसरा देह धारण कर, तो वो छुत हुआ, छूटा, छूट गया। देखो इसका विशेषार्थ देखते हैं। जैसे पका हुआ फल अपना समय पूरा हो जाने के कारण वृक्ष में से स्वयं गिर पड़ता है, वृक्ष से अलग होने के लिए उसे और दूसरे बाह्य निमित्तों की अपेक्षा नहीं पड़ती। उसी प्रकार यानी कोई किसी ने आकर काट लिया है, कोई वायु से पता हो, ये जो कुछ अन्य कारण, तो ऐसा कुछ नहीं। उसी प्रकार आयु कर्म के पूरे हो जाने पर जो शरीर शस्त्रादि के बिना छूट जाता है, यानी किसी बंदूक के गोली से, कोई एक्सीडेंट से ऐसा नहीं मरा है, वो तो स्वयं है, वो उसे च्युत शरीर कहते हैं। कदलीघात के द्वारा छिन्न आयु के क्षय हो जाने से छूटे हुए शरीर को चावित शरीर कहते। क्या कहते हैं? आयु तो अधिक बांध के आया था, कदलीघात हुआ, यानी ऐसे हर कर्मों की निषेक रचना होती है, उसकी स्थिति बनती है। तो मान लेते 100 साल की आयु की स्थिति बांधकर इस भव ने उसने जन्म लिया और ये 25 साल का हुआ, अभी उसके 75 साल के एक एक समय वाले निषेक पड़े हैं वहाँ सत्ता में। अब क्या हो सकता है उसमें? किसी बंदूक के गोली से, कोई एक्सीडेंट से, अन्य कुछ भी कारण हो सकता है। तो उसमें क्या हुआ, वो निषेक जो था ना इतने समय के, उसका घात होकर वो परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिले, अब यहाँ जाके उसका आयु का बंध होगा। इसके पहले तो नहीं हुआ था, क्योंकि 2/3 बीत जाने पर होता है। अभी 25 ही साल वनपोर की आयु बीत गई थी, वहां तो कोई आयु का बंध होने का सवाल नहीं था। अब उसके जो निषेक घट गए तो नेचुरली उसके बीती हुई आयु मोर देन 2/3 हो गई, बहुत हो गई। अब ये उर्वरी जो निषेक है उसमें से अभी उसका आयु का बंध हो जाएगा, और आयु का बंध होगा जितने अभी उसके निषेक बाकी, वो घिरकर एक एक घिरकर उसका वहां मरण हो जाएगा। इसको कहेंगे कदलीघात। ये कदलीघात ये वर्तमान यानी जो हम भोग रहे हैं भुज्यमान आयु की होती है, उसमें ही होता है, और वो भी कर्म भूमि के मनुष्य तीर्यंचों में होता है, भोग भूमि में नहीं होता, देवों में नहीं होता, नारकी में नहीं होता। हाँ, उसके ऐसे परिणाम से आयु बंधी वो सब कुछ निश्चित है। बंधे हुए तो उसने पूरी बांधी थी, परंतु ये नक्की है, इस तरह से वो जाने वाले ये नक्की, केवल भगवान ने तो जाना है उसके। अभी वो इस तरह से कदलीघात होकर ही मरने वाला है, ये तो नक्की है, यानी बेचारा बाय चांस मर गया ऐसा भी नहीं है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में है ना ये कदलीघात से मरने वाला है। तो कहते कदलीघात के द्वारा छिन्न आयु के क्षय हो जाने से, छिन्न आयु ने उसकी आयु पहले में पहले कट डाउन हो गई, छिन्न हुई, और फिर वो क्रम से एक एक निषेक गल गया, इसलिए उस क्षय हो गया। छूटे हुए शरीर को चावित शरीर कहते। पहला च्युत था, वो अपनी आयु की स्थिति पूरी हुई है तो मर गया, अब ये चावित ने कदलीघात से मरा, तो उसके लिए यहाँ उन्होंने एक रेफरेंस भी दी, कहा भी है, कहते ऊपर 12 नंबर है ना गाथा,
तो उनके तो 11 नंबर के बाद 12 ही आएगा।
हाँ,
तो कहा भी है,
11 तो बहुत पहले चुके
हैं,
हमने आज शुरुआत की वहां से।
17 पेज पर 11 नंबर हो गया था।
हाँ,
और अभी 12 हुआ, यानी वो
अभी
12
नंबर। हाँ,
यानी इसका ही, इट इज नॉट अ कोटेशन,
कोटेशन ही है ना।
अरे
कहा भी है, कहा ना उन्होंने,
फिर 12 नंबर क्यों दिया?
अच्छा, यानी उन्होंने क्या, आपका ये कहना है कि उनकी ओरिजिनल गाथा है, ऐसा कहना आपको?
हाँ, बिल्कुल।
अपन ये तो टीकाकार ने लिखी है, सूत्र तो हमारा एक ही हुआ है,
बराबर। यानी कहा भी है ये,
रेफरेंस बताया, जैसे पहले त्रिलोक पन्नति की गाथा बताई थी,
ये क्या कहना है? ग्यारह नंबर का सूत्र जो कोई है या गाथा जो भी आप कहो तो सत्रह नंबर पृष्ठ पर था, अब ये बारह नंबर पे हम आए, चौबीस पे, अट्ठाईस पे तेरह है। इसका अर्थ ये गाथा जो है वो धवला की है, फिर भी कहा है ऐसा लिखा। मैं नंबर बारह कुठे गेला,
ये अभी बारह है ना,
वही तो मैं कह रहा हूँ, यही उक्तम छ के आगे लिखा ना उन्होंने।
हाँ।
उक्तम छ का अर्थ क्या रेफरेंस दे रहे हैं हम,
देखो पहले भी वो स्वयं भी लिख सकते हैं या उक्तम भी लिख सकते हैं। ये जो वीरसेन स्वामी ने इनको दिया है यहाँ पर, तो ऐसा कहते हैं, ऐसा कहकर उन्होंने वो बात बताई। अभी वो कौन से आगम की है कुछ नहीं, परंतु उसके सिमिलर कुछ आगम का वहाँ रेफरेंस दिया है। जैसे अभी विश्ववेयन ऊपर लिखा है ना, तो एक आंकड़ा लिखा नीचे गोमरसार कर्मकांड सत्तावन नंबर की गाथा बताई उन्होंने, परंतु गोमरसार जीवकांड तो बाद में रचा गया है।
हो गया बोल के, अभी जो एक दो तीन ग्यारह बारह तेरह ऐसे जो कुछ होंगे वो रेफरेंस में गिने जाएंगे क्या, नहीं यही बात है मेरी।
सभी नहीं गिने जाएंगे, कुछ उन्होंने रेफरेंस रूप से दिए है जो ऑलरेडी
है, उसको रेफरेंस में दिया,
ऑलरेडी जो चल रहा है उस जमाने में ऐसी कोई वहाँ उन्होंने स्वयं गाथा रची या ऐसे कहते हैं कहकर उन्होंने बता दिया। हर बार उत्तम ऐसा नहीं लिखा,
ये जो गाथाएं लिखी है वो धवला की ओरिजिनल है क्या, ये वीरसेन आचार्य ने लिखी है,
धवला ही वीरसेन आचार्य ने लिखा है।
अच्छा,
ओरिजिनल तो षटखंडागम है, उसका तो एक ही सूत्र हुआ नमो अरिहंतानंग वाला, ये सब चर्चा वीरसेन स्वामी की चल रही है।
तो वीरसेन स्वामी के जो उत्तम ऐसा
था, हाँ,
हाँ। और वो उन्हीं की गाथा लिख रहे,
उन्हीं की नहीं, वो उस जमाने की जो कोई शास्त्र रचना थी उनकी है।
अच्छा,
हाँ।
तो फिर ये बारह जो है वो वीरसेन की नहीं है, किसी के उत्तम से उन्होंने दी है।
वीरसेन स्वामी ने अभी कहाँ से लिखा है मालूम नहीं, उन्होंने उत्तम च कहकर ये गाथा वहाँ दी।
वो क्यों लिखा है यही तो मेरा प्रश्न है, उत्तम
क्योंकि उस समय वो,
क्योंकि बारह के बाद तेरह नंबर जो है,
देखो तेरह नंबर
बीच में इनकी बारह जो अगर उत्तम च होती तो बारह नंबर की आनी चाहिए ना आगे। अट्ठाईस नंबर पर तेरह है,
हाँ, ये हर बार वो उत्तम च नहीं कहेंगे, वो स्वयं भी रचना करेंगे और कहीं उनको लगता है तो पहले वाले उत्तम च लिखा उन्होंने, पंद्रह पर फिर उत्तम च लिखा है।
हमारी समझ,
सोलह उत्तम च लिखा है, सोलह सत्रह अठारह उत्तम च लिखा है, बहुत सारी गाथाओं में उत्तम च ही लिखा है, उन्नीस बीस में।
हम जो अर्थ कर रहे हैं उत्तम च का अर्थ हम रेफरेंस दे रहे हैं ये नहीं होता, ये तो मेरे बात पक्की हो गई ना। जैसा हम अन्यत्र पढ़ते उत्तम च, यानी ऐसा ऐसा चौड़ाला में कहा, ऐसा ऐसा परमात्मा प्रकाश में कहा है, वैसा यहाँ नहीं है, ऐसा उसका अर्थ होता है।
ठीक है, अभी यहाँ तिलोय पन्नति के भी कुछ रेफरेंसेस बताएं, वो तो उसके पूर्व की रचना होनी चाहिए, यानी उसके सिमिलर अन्य कहाँ कहाँ पाए जाते वो फुटनोट में दिए हैं, वो फुटनोट में तो बाद में दिए ना, ये संपादन करने वालों ने दिए, क्योंकि फुटनोट में जो ग्रंथ बताए हैं वो तो धवला के पश्चात रचे हुए हैं। हाँ, परंतु ये धवलाकार ने वो उत्तम च कहकर ये बात बताई है, ये हो सकता है उनकी अपनी रचना है, हो सकता है उस जमाने में चली आ रही गाथाएं होगी, ये मैं नहीं कह सकती इसके बारे में। अभी कहाँ तक आए हम, कितने रेफरेंस देखे थे,
24 पेज,
द्रव्य निक्षेप की बात चल रही थी, आगम और नो आगम द्रव भेद किए, आगम में जानने वाला जी उसमें उपयोग से रहित वर्तमान में, नो आगम में तीन भेद लिया, ज्ञायक शरीर भावी तद व्यतिरिक्त, ज्ञायक शरीर के तीन भेद, भूत ज्ञायक शरीर, वर्तमान ज्ञायक शरीर, भावी ज्ञायक शरीर, जो भूत यानी अतीत गया एक शरीर है वो किस प्रकार से शरीर छोड़ा था, तो च्युत यानी आयु का क्षय हुआ अपने समय पर, चावित यानी कदली घास से मरण हुआ, और त्यक्त की बात अभी हमने पढ़ी नहीं है, उसको पढ़ेंगे। तो ये जो चावित वाली बात है कदली घात की, उसके लिए यहाँ उन्होंने उक्तम च कहकर एक गाथा लिखी है, विसवे अनरक्त क्षय भय सत्थ गहन संकिले से ही आहार उत्साहणम निरोह दोचिज्य दे आऊ। यानी विष भक्षण में विष के खा लेने से, वेदना से, रक्त का क्षय हो जाने से, रक्त क्षय यानी हिमरेज कहो ये ब्लड लॉस कहो, तीव्र भय से, शस्त्राघात से, संक्लेश की अधिकता से यानी अधिक तीव्र कषाय ऐसा होकर, तथा आहार और श्वासोच्छ्वास के रुक जाने से आयु क्षीण हो जाती है। किसी का नाक मुंह दबा देते तो उसका श्वास रुक गया या कोई कुछ अटक गया तो कहते हैं तो उसकी आयु क्षीण हो जाती है। अब इसके लिए गाथा में एक और दो नंबर लिखे हैं विश्ववेयन वगैरह, तो वहाँ गोमटसार 57 नंबर बताया है। संकिले से ही ऐसा भी दूसरा कुछ पाठ होगा, और आहार उत्साहणम केवल आहारो निरोह जो ऐसा आया है, यानी अन्य ग्रंथों में कहाँ क्या आया है उसकी बात है, उसका अर्थ अभी हमने देखा। विष का विशेषार्थ, जैसे कदली यानी केला के वृक्ष का तलवार आदि के प्रहार से एकदम विनाश हो जाता है, उसी प्रकार विषभक्षण आदि निमित्तों से भी जीव की आयु एकदम उदीर्ण होकर छिन्न हो जाती है। इसे ही अकाल मरण कहते हैं, और इसके द्वारा जो शरीर छूटता है उसे चावित शरीर कहते हैं। ये भूत अतीत काल के शरीर संबंधी बात चल रही है, एक हुआ च्युत, एक हुआ चावित, तीसरा त्यक्त है। तो त्यक्त शरीर भी तीन प्रकार का है। त्यक्त ने उसने छोड़ा कुछ तप वगैरह के कारण, तो कहते प्रायोपगमन विधान से छोड़ा गया, इंगिनी विधान से छोड़ा गया, और भक्त प्रत्याख्यान विधान से छोड़ा गया। इस तरह त्यक्त शरीर के तीन भेद हो जाते हैं। पहला च्युत था, चावित था, और ये त्यक्त जिसको हम कहने उसने संन्यास धारण करके छोड़ा, उस टाइप का ये है, उसके भेद करेंगे। अपने और पर के उपकार की अपेक्षा रहित समाधि मरण को प्रायोपगमन कहते हैं, यानी कोई उसके वैयावृत्ति ना स्वयं स्वयं का करते हैं ना कोई अन्य मुनि उनके करते हैं, और वहाँ जो होता है उसको प्रायोपगमन कहेंगे। विशेषार्थ, प्रायोपगमन समाधि मरण को धारण करने वाला साधु संस्तर का ग्रहण करना, बाधा के निवारण के लिए हाथ पांव का हिलाना, एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाना आदि क्रियाएं न तो स्वयं करता है और न दूसरे से कराता है। जैसे काष्ठ सर्वथा निश्चल रहता है, उसी प्रकार वह साधु समाधि में सर्वथा निश्चल रहता है। शास्त्रों में प्रायोपगमन के अनेक प्रकार के अर्थ मिलते हैं, जैसे संघ को छोड़कर अपने पैरों द्वारा किसी योग्य देश का आश्रय करके जो समाधि मरण किया जाता है उसे पादोपगमन समाधि मरण कहते हैं, अथवा प्राय अर्थात संन्यास की तरह उपवास के द्वारा जो समाधि मरण होता है उसे प्रायोपगमन समाधि मरण कहते हैं, अथवा पादप अर्थात वृक्ष की तरह निष्पंद रूप से रहकर शरीर से किसी भी प्रकार की क्रिया न करते हुए जो समाधि मरण होता है उसे पादपोपगमन समाधि मरण कहते हैं। इन सब अर्थों का मुख्य अभिप्राय यही है, इस विधान में अपने व पर के उपकार की अपेक्षा नहीं रहती। अब बाकी चर्चा कल करेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो सदा देता हो नितिन भाई।